سليم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. میرے ذہن میں خیال ہے کہ آپ حضرات یہاں سوال لکھ کے دیتے ہیں مجھے, تو کچھ سوالوں کے جواب میں میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے کا آپ کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب یہ میں عرض کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کے پوچھے ہوئے سوال کو ٹرن ڈاؤن کر رہا ہوں یا کوئی اور ذہن میں میرے خیال ہے, بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر کسی پر نظر کرم کر دے اور اس کو کچھ علم عطا کر دے تو اس علم کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دے دے, دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے, جو علم اسے ملا ہے, خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو, وہ اس کو دوسروں تک پاس آن ضرور کرے. یہ ڈیوٹی ہے, فرض ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس پر ڈیوٹی لازم ہو جاتی ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے اگر اس سوال کے جواب سے کنفیوژن دماغ میں کسی کے پیدا ہو یا وہ علم اسے نفع نہ دے, تو جس سے سوال پوچھا گیا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سمجھا دے کہ اس سوال کے اس وقت پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی جگہ اگر ہم کر لیں تو اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ علم میں ہمارے اضافہ ہوگا, اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اس مقام پر جا پہنچیں گے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تو مثال کے طور پر عام طور پر ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ اس میں عزم کیا ہے, یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. اب اگر کوئی پلٹ کے یہ کہہ دے کہ اس میں عزم بتانے کی اجازت نہیں ہے تو بات وہیں ختم ہو گئی, محنت نہیں کرنی پڑی. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں یہ سوال پوچھے جانے کے جواب میں اسے ایکسپلین کر دوں تاکہ دوبارہ دل میں یہ خواہش نہ آئے, تو پھر ایک پوری لمبی بات بتا دے گا آپ کو کہ دیکھیے اس میں عزم کو اگر ظاہر کرنا مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے, کوئی صحابی بتا دیتے, ان سے تو چھپا نہیں تھا یہ, کوئی ولی اللہ ایکسپلین کر دیتا اسے, کسی نے بھی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں عزم ہاتھ لگ گیا تو ہم انسان ہیں, کم از کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کمزور ہیں انسان. کل کو کسی وقت کوئی ایسا موقع آ گیا کہ میں نے اسے استعمال کر لیا, تو جتنی بھی میری علم کی راہ پر کی ہوئی محنت ہے وہ سب کی سب رائے گاں گئی کہ میرا نام لسٹ میں سے کاٹ دیا گیا, یہ نقصان ہو جائے گا. ये अगर एक्सप्लेन मैं कर दूं तो ये मेरी ड्यूटी है करना, नहीं करूंगा तो मैं अपनी ड्यूटी में फेल कर रहा हूं। ये सब कहने का मकसद ये नहीं होता कि सवाल पूछे जाने वाले को मैं हर्ट कर दूं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक ख्याल होता है। तो अगर कभी आपके किसी सवाल के जवाब में मैं आपसे ये अर्ज कर दूं तो ये मत समझिए कि मैंने आपको, आपके सवाल को टर्न डाउन किया है या मैं आपको कोई नसीहत कर रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये सवाल इस तरह से अभी ना पूछिए, आप इससे आंखें बंद करके इस पर, जिसको हम कहते हैं कि अंधा यकीन रखिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के कलाम पर, और इसको बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह को पुकारिए। तो जब हम अल्लाह को इस तरह पुकारेंगे तो रब ताला हम पर बहुत सी रहमतें नाजिल फरमाएगा, और उन इनायात में से एक इनायत ये भी होगी कि खुद हमें इल्म मिल जाएगा और ये तमाम चीजें हम पर आया हो जाएंगी जिनको हम पूछना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं अभी स्टूडेंट हूं तो मैं बहुत से लोगों से एक सवाल पूछूं कि साहब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कैसा होता है, उसके अंदर कहां बैठता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके ब्लू बुक में प्रोटोकॉल की डिटेल्स क्या हैं उसकी। तो जवाब देने वाला अगर ये कहे कि मैं, मेरे लिए तो सबसे आसान काम ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिस कैसा है और ब्लू बुक में प्रोटोकॉल की के बारे में क्या लिखा है कि ऑथराइजेशन क्या है प्राइम मिनिस्टर की प्रोटोकॉल के सिलसिले में, बड़ी आसानी से जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं आपको वो रास्ता क्यों ना बता दूं जिस रास्ते पे चल के कल को आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जब जाके बैठेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, और प्रोटोकॉल क्या है, जब आपको एज प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल मिलेगा तो आपके इल्म में आ जाएगी बात। अब दोनों में से मेरा हमदर्द कौन है ज्यादा, वो आदमी जो मुझे वो रास्ता बता रहा है जिससे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या वो आदमी जिसने अपनी जान छुड़ाने को बड़ा सिंपल जवाब दे दिया कि साहब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में इस तरह का फर्नीचर है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और प्रोटोकॉल ये कहता है कि इतनी उनके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां होंगी, इंटेलिजेंस की होंगी, कमांडोस होंगे, एम्बुलेंस होगी, तो वो डिटेल देके उसका फायदा क्या होगा मुझे, कुछ भी नहीं। तो मेरा असल हमदर्द वो है जो मुझे प्राइम मिनिस्टर, उस सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी अपनी इल्मियत का इजहार कर रहा है, वो सही हमदर्द है मेरा, इल्मियत का इजहार नहीं है, ना वो उसको गरूर है कि मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अंदर से कैसे आए और प्रोटोकॉल क्या है। तो वो आपको एक सीधी राह दे रहा है आपके हमदर्द होने की निस्बत से। मैं कल सुबह ही वापस आया, तुर्की गया हुआ था, वहाँ तुर्की में बहुत ही अजीम साहबी हैं। एक तो उनकी अजमत वो है जो किताबों में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो कुछ हम उनके बारे में किताबों में पढ़ते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो इंसान हैरान होता है कि इंसान किस बुलंदी और अजमत पे चला जाता है। और उनकी अजमत और मेहरबानी की झलक देख के पहली बात जो जुबान से निकलती है वो यही निकलती है कि हजूर आप वाकई ही इसके हकदार थे कि आप मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सही आपके घर के सामने बैठी थी जाके। इसी तरह वहां जनाब हजरत अबी काब का रोजा मुबारक है, साहबी हैं। और एक और बहुत ही मोहब्बत वाली हस्ती, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई हैं, हजरत अहमद अल अंसार। आप बहुत ही मोहब्बत वाले आदमी, उनकी मोहब्बत स्पिल ओवर होती दिखाई देती है, इतना इतनी शिद्दत है उनकी मोहब्बत और प्यार में। और एक और मजे की हस्ती है वहां, जनाब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। बहुत मजे के आदमी है। और इनमें जो एक खूबी या एक चीज जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं और इनसे मुलाकात होती तो ये अपनी मोहब्बत के जरिए दूसरे आने वाले को अपना ही बना लेते हैं। तो बंदा ये सोचता है कि मैं यहाँ जितना फ्रीक्वेंटली आ सकूँ आ जाऊँ। कमाल की हस्ती हैं, कोई 750-800 किलोमीटर दूर कोनिया है जहाँ जनाब हजरत मौलाना रूम आराम फरमा रहे हैं। मुसलमानों में ये मेरी मालूमात की हद तक ये वाहिद शख्सियत हैं जिनके वक्स पर मगरिब सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अमेरिका में बहुत काम हो रहा है इनके वक्स पे, यूरोप में काम हो रहा है बिलखुसूस इंग्लैंड में। और 2007 में इनकी 800वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी तो रूमी फाउंडेशन यूके में उन्होंने एक फंक्शन इसका इन पर होल्ड किया था हाउस ऑफ लॉर्ड में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड में वो फंक्शन हुआ था। तो पाकिस्तान से मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मुझे बुलवाया था मौलाना रोम पर गुफ्तगु के लिए, और इंडिया से एक डॉक्टर अब्दुल्ला थे उनको बुलवाया गया था। वहां जाकर अल्लाह से आदमी एक ही दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे इल्म का ये मकाम अता कर दे के तेरे गैर मुस्लिम बंदे भी इल्म पर तहकीक करें। वहां जाके इल्म की अजमत का एहसास होता है कि इल्म की अजमत है क्या और इल्म की वैल्यू क्या है, और वहीं उनके मुर्शद हैं जनाब हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। तो आप में से अक्सर लोग वहां गए होंगे, तो उनका एक जो कमाल देखता है इंसान, वो एक बहुत ही बड़ी पेक्यूलियर चीज़ है। मुझे जहाँ जहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, ये तासुर सिर्फ दो ही जगहों पर मैंने देखा, एक मुल्तान में शाहरुख ने आलम साहब है उनके मज़ार पर ये तासुर है, और दूसरे शाह शम्स तबरेज़। शाहरुख ने आलम साहब का तो मज़ार बहुत ही बड़ा है, हत्ता कि उसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि टॉलेस्ट मज़ार है दुनिया का वो। लेकिन शाह शम्स तबरेज साहब का मज़ार बड़ा छोटा है, जिस कमरे में आप, जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं इसके बराबर का कमरा है जहां आप आराम फरमा रहे हैं, और बाहर इस पोर्शन के बराबर कमरा है उसमें जूते रखने का इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन जो ही आदमी उसमें दाखिल होता है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने लोग भी गए उनका कहना है ये था कि उस छोटे से कमरे में दाखिल हो गए, एकदम तासुर ये पैदा होता है इंसान में कि मैं किसी बहुत बड़े शहनशाह के दरबार में हाजिर हुआ हूँ। वहाँ रोब दबदबा हैबत और ग्रैंडियर वो इस टाइप का है। तो वहाँ जाके आदमी को एहसास होता है कि कोई अजब नहीं कि आपके शागिर्दों में मौलाना रोम जैसी हस्ती पैदा हुई है। ये वो लोग हैं जहां जाके रब ताला से एक दुआ की जानी चाहिए कि या बारी ताला तूने जो रहमत अपने इन नेक बंदों पर की थी वैसी ही रहमत मुझ पर भी नाजिल फरमा दे कि मुझे इल्म का ये मकाम अता कर दे। तो वहां जाके आदमी को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह एहसास होता है कि इल्म क्या चीज है। एक जमाने में मेरे अपने मुर्शद साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे तो बात समझ में नहीं आती थी कि सब कुछ इल्म ही है। ये मुर्शद साहब का फरमान था, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आती थी। होता यह है कि जब इंसान की तरबियत हो रही होती है और उस तरबियत के हिस्से के तौर पर इंसान को एक ऐसी मिल में से गुजारा जाए, होता यह है कि जब इंसान की तरबियत हो रही होती है और उस तरबियत के हिस्से के तौर पर इंसान को एक ऐसी मिल में से गुजारा जा रहा होता कि इंसान की जुबान एक फुट मुंह से बाहर लटक रही होती है, जिस किस्म के हालात पेश आते हैं इंसान को, खाने को रोटी नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती, घर के अंदर फैमिली लाइफ इंसान की बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है, तो हर वक्त यही नजर आता है कि जो जूते घर से पड़ रहे हैं वो तो एक चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात कि शायद मेरा घर टूट जाए, आज घर टूटा कल टूटा, वो एक सूरत हाल घर में बनी हुई होती है। अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मिलने वाले, वो जिस अंदाज में जूते मार रहे होते हैं, वही लोग जो पहले बहुत ज्यादा ताजीम करते थे वही जूते मार रहे होते हैं। इंसान के किरदार पर तोमते लग रही होती, उंगलियां उठ रही होती हैं। ये सब एक ही वक्त में सब कुछ चल रहा होता। और मजे की बात यह है कि आदमी उन हालात से तंग आया हुआ रब ताला से दुआ कर रहा होता कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, कोई जिंदगी थोड़ी आसान कर दे, क्योंकि उस वक्त ये समझ नहीं होती कि मुझे दुआ क्या मांगनी है रब से, वो इल्म के उस मकाम पर आया नहीं होता। तो उस वक्त जब मुर्शिद साहब फरमाते हैं कि इल्म असल बात इल्म है, जिस आदमी के पास इल्म आ गया, जिसको रब ने इल्म अता कर दिया, वही कामयाब है। तो उस वक्त समझ नहीं आती ये बात के इल्म की इतनी अहमियत है, वो तो जब आदमी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो शामिल कर लिया जाता है एक मखसूस हल्के अहबाब में, जिसको उर्फ़े आम में हम ये कहते हैं कि उसके शोल्डर पे मोहर लग जाती है, तो ये तंगियां दूर होती हैं। फिर जब ये तंगियां दूर हो जाती हैं और फिर इंसान की आंख चीजों को उसके असल रंग में देखती, क्योंकि जब इंसान इससे गुजर रहा होता है तो दिखाई भी कुछ नहीं देता आदमी को कि मामलात हैं क्या, तो फिर एहसास होता है कि इल्म क्या है। और मुर्शिद अगर बहुत अच्छे हैं तो वो सीधा सीधा एक बात फरमा देते हैं कि आपका जो हिस्सा मेरे पास था मैंने दे दिया आपको, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप खुद कितनी मेहनत करते हैं और आप खुद क्या सीखते हैं कहीं से, तो उतने ही आगे चले जाएंगे जितनी आप खुद मेहनत करेंगे। मेरी ड्यूटी पूरी हो गई जब मैंने आपका हिस्सा आपको दे दिया, लेकिन ये जरूर है कि तरबियत करते हैं मुर्शिद, बगैर तरबियत के कुछ मिलता नहीं, ये बड़ा मसला है। हम जाएं किसी भी वली अल्लाह के पास, अगर हमारी तरबियत नहीं हुई भी तो हम कबूल नहीं किए जाते। फिर तो ये तरबियत होना बड़ा जरूरी है। एक बच्ची मेरे पास कल तशरीफ लाई, तो उन्होंने ये तो अच्छा किया कि बड़ी साफ गोई से मुझे एक बात कह दी कि देखिए मुझे पढ़ने को कुछ मत बताइएगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ना। बड़ी अच्छी बात थी। आप सिर्फ ये बता दें कि ये मेरे साथ लोग ये सब क्यों करते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। तो मैंने उस बच्ची की बात खामोशी से सुनी, तो जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली, क्योंकि वो खासी भुट्टो स्टाइल में जज्बाती तकरीर कर रही थी, तो उनकी बात मुकम्मल हो जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि बेटी आप अपने रवैये तब्दील कर लीजिए, जिंदगी के लिए रवैया तब्दील करें, लोग खुद ब खुद आपको दुख देना बंद कर देंगे। तो वो फिर खासी बरहम हो गई मेरे साथ, कहने लगी कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं मुनाफ़क़त करूं लोगों के साथ, मैं झूठ बोलूं, मैं जो मुझे दुख दे मैं उसके साथ पोलाइट रहूं, आप ये कह रहे हैं मुझे करने को, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं ये सब करूं। तो मैंने उनसे कहा कि बीबी ये बताइए कि आप मजहबन क्या हैं, किस मजहब की पैरोकार हैं। सीधा जवाब था कि ऑब्वियसली मुस्लिम हूं मैं, अल्लाह आपका भला करे मुस्लिम है। तो ये फरमाइए कि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का हमें हुक्म है, क्या वो लोगों के जो दुख देते थे लोगों ने उसके जवाब में वो इम्पोलाइट होते थे या पोलाइट रहते थे। तो नहीं, पोलाइट थे। मैंने उनसे कहा कि आप ये तवक्को रखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह कभी कोई ऐसी बात उन्होंने फरमाई होगी जो हकीकत के से दूर हो, कि नहीं। तो मैंने उनसे फिर पूछा है कि ये जो मुनाफ़क़त का जिक्र कर रही हैं इसकी तालीम तो नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नहीं। तो मैं फिर उनसे मैंने अर्ज किया कि बीबी मैं आपको सुन्नती की पैरवी की कह रहा हूं, ये चीज इंसान में उस वक्त पैदा होती है जब उसके पास इल्म आ जाता है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि इंसान के लिए बड़ा आसान होता है कि जो लोग उसे दुख दें वो जवाब में उन्हें सुख दे। जो लोग उस पर तोहमतें लगाएं इंसान उनके लिए मुतवाज़ो हो जाए। यह आता इल्म से ही है, उसके बगैर नहीं आता। صاحب علم ہر وقت اسی الجھن میں رہتا ہے زندگی بھر. کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کروں, اس لیے کہ اس کو اپنی ذات بڑی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. تو جب انسان کی اپنی انسان کی نظریں اپنی ہی کوتاہیوں پر رہتی ہیں تو انسان کو فرصت نہیں ملتی کہ کسی دوسرے کی کوتاہیوں کو دیکھ پائے. جب انسان کی نظر اپنی ہی خامیوں پر رہتی ہے تو پھر فرصت نہیں ملتی کہ دوسرے کی خامیاں اسے دکھائی دے جائیں. وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے صحیح ہی میں پڑا رہتا ہے. اور اس کا ایک زبردست فائدہ علم کا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں تو اس کو دوسرے سب اپنے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں, اپنا آپ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی آدمی کی کسی بات کا برا نہیں مناتا, وہ ہر ایک کی بات سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے قصے میں رہتا ہے کہ یہ جو آدمی میرے پاس بیٹھا ہے میں اس سے سیکھ لوں جتنا سیکھ سکتا ہوں تاکہ میں کچھ بہتر ہو جاؤں. تو یہ بہت بڑی ایک چینج آتی ہے انسان میں جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پھر کسی کی بات کوئی اسے بری لگتی ہی نہیں, بڑے تحمل سے جواب دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم سے انسان میں تحمل آتا ہے, بردباری آتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ واقعی صاحب علم ہیں, جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, وہ کبھی ریش نہیں ہوتے, غصے میں نہیں آئیں گے. ایک بات دوسرے, جب وہ آپ کو جواب دیں گے آپ کی کسی تلخ بات کا تو بھی ان کے الفاظ اتنے بیلنسڈ ہوں گے اور وہ اتنے پولائٹ ہوں گے کہ سننے والا ویسے ہی اپنا غصہ بھول جائے. ایک زمانے میں میں نے جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک فرمان پڑھا, وہ فرمان تھا کہ دشمن سے مشورہ دشمن کی دشمنی کو توڑ دیتا ہے. یہ کمال کا مشورہ تھا, پڑھا ایک زمانہ پہلے تھا, موسٹ پرابلی کہیں 1970-71 میں پڑھا ہوگا. وہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ایک بات کھلی کہ اس کے پیچھے تو کمال کی وزڈم ہے. ہم کہیں اگر سڑک پہ جا رہے ہیں اور جیسے اکثر ہو جاتا ہے تو کوئی صاحب اگر گالی دے کے گزرے تو آپ اس کے جواب میں اس کو سلام کر دیں, اور تماشا دیکھیے کہ انسان پہ. لیکن یہ کرے گا وہی جو ذہنی طور پر بڑا آدمی ہے اور علم ہے جو اسے بڑا بنا دے گا. میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میں ترکی گیا تھا تو وہ ट्रेन में ये होता है कि मुझे सैटरडे मॉर्निंग तक लाहौर पहुंच जाना चाहिए, तो नतीजा ये होता है कि मेरी टूर जो है वो मैक्सिमम वेंसडे से फ्राइडे इवनिंग तक के होते हैं। तो अब वो थकन ने इस तरह से तोड़ा हुआ था कि आज दिल ये चाह रहा था कि बड़ी हल्की फुल्की सी बात की जाए, तो यूं आपसे इन बेमायनी किस्म की बातों में आपका वक्त जाया करता रहा, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आपसे नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है, तो फिर आपके सवालात के सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।